राधिका को होश आ गया था। उसने इशिका की मौजूदगी को महसूस कर लिया था। अब राधिका आदर्श से जिद कर रही थी कि वो इशिका को लेकर आए। आदर्श जब बाहर गया तो राधिका ने केशव की मदद लेने के लिए सोचा, लेकिन इस बीच आदर्श वापस आ गया था। राधिका ने आदर्श से कुछ नहीं छुपाया और उसे सब बता दिया था। आदर्श को राधिका का केशव से मदद लेना अच्छा नहीं लगा। वो बातों को किसी और तरफ ही ले गया था। इतने सालों में पहली बार आदर्श राधिका के साथ वॉयलेंट हो रहा था। उसकी बातों से पता चल रहा था कि उसने चार दिन पहले केशव और राधिका को एक साथ रेस्टोरेंट में देख लिया था। आदर्श की जलन और बातें सुनकर राधिका को अचानक कुछ स्ट्राइक हुआ। क्या उस दिन तुम, राधिका ने कहना चाहा, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही आदर्श ने उसका मुंह कसकर बंद कर लिया था। राधिका दम घुटने की वजह से कसमसाने लगी थी। आदर्श ने अपनी पकड़ को थोड़ा ढीला छोड़ दिया। वो तेज सांस लेते हुए बोला, आगे कुछ मत बोलना। राधिका ने खुद को आदर्श से आज़ाद करवाना चाहा, लेकिन आदर्श उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। राधिका ने उसके हाथ को काट लिया था। दर्द के मारे मजबूरन आदर्श को अपना हाथ पीछे देना पड़ा। राधिका जल्दी से उठकर उससे दूर हुई। वहीं आदर्श अपने हाथ को देख रहा था जिस पर राधिका के दांतों के निशान आ गए थे। राधिका की आंखों में आंसू थे। उसने आदर्श की तरफ देखकर रोते हुए कहा, तो वो तुम थे जिसने मेरी इशिका की जान ली। राधिका से बहस करना बेकार था। आदर्श सफाई देना भी नहीं चाहता था। राधिका के सामने सच्चाई आ गई थी। ऐसे में कुछ भी कहना या खुद को सही साबित करने की कोशिश करना बेकार था। आदर्श ने राधिका की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कड़वाहट के भाव थे। उसने जवाब में कहा, राधिका, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। राधिका को लगा कि वो पागल हो जाएगी। जिस इंसान पर उसने इतना भरोसा किया, उसने उसकी बेटी को मार दिया था। राधिका ने सिसकते हुए कहा, इसमें मेरा कौन सा भला था आदर्श, जो तुमने मेरे लिए मेरी बेटी को मारने की कोशिश की। तुम पागल हो गए हो। राधिका आगे कुछ कहती उससे पहले आदर्श ने उसे पकड़कर बेड पर धकेल दिया था। वो अब उसके ऊपर आ गया था। आदर्श ने अपने दोनों हाथों से राधिका के हाथों को पकड़कर उसे कंट्रोल कर रखा था। राधिका पिछले तीन दिन से बेहोश थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आदर्श को अपने ऊपर से हटा सके। उसने आदर्श की आंखों में देखकर सुबकते हुए कहा, तुम क्या करने वाले हो? आदर्श के दिमाग में क्या चल रहा था ये सोचते ही राधिका का पूरा शरीर कांप गया था। कुछ नहीं, बस अपना हक ले रहा हूँ जो तुम्हें बहुत पहले दे देना चाहिए था। पिछले 22 सालों से साथ हूँ, लेकिन तुमने कभी मेरा प्यार नहीं एक्सेप्ट किया, कभी मेरे प्यार की इज्जत नहीं रखी, आदर्श ने कहा, और फिर उसने अपना चेहरा राधिका की गर्दन में छुपा दिया था। उसकी गर्म सांसों को राधिका महसूस कर रही थी और उसे इससे घिना रही थी। राधिका ने धीरे से कहा, प्लीज मुझे जाने दो, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं पागल नहीं हुआ हूँ, सोचा इतने सालों में कभी तो तुम्हारा दिल पिघल जाएगा और तुम्हें मेरा प्यार दिखाई देगा, लेकिन तुम बहुत क्रूअल हो राधिका, तुम्हें कभी मेरा प्यार दिखाई ही नहीं दिया। अरे इतने दिनों में तो एक पत्थर भी पिघल जाता है, लेकिन तुम तो उससे भी बदतर निकली राधिका मर्चेंट, आदर्श ने जवाब दिया। उसके पूरे हाथ राधिका की बॉडी पर मूव हो रहे थे। मैंने तुम्हें पहले दिन ही कहा था कि मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं होगा, हम बस एक दोस्त के तौर पर साथ रह सकते हैं, शादी करना या ना करना तुम्हारा डिसीजन था, राधिका ने जवाब दिया। राधिका की बात सुनकर आदर्श ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ डिसीजन मेरा था, क्योंकि तब मेरे लिए यही काफी था कि तुम मेरे साथ रह रही हो, पर धीरे धीरे मैं बदलने लगा, मुझे तुम्हें हासिल करना था। कभी सोचा है कि मुझे कैसा लगता था जब तुम्हारे पेट में केशव सिंघानिया के बच्चे को पलते हुए देखा था? हर पल दिल में यही सवाल आता था कि काश मेरा बच्चा तुम्हारे पेट में होता, अगर वो हमारा बच्चा होता तो मैं उसे बहुत प्यार करता, उसे किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। आदर्श की बातों से राधिका जी दिमाग में कुछ स्ट्राइक हुआ। उसने रोते हुए कहा, तो तुम पहले से जानते थे कि मालविका ने मेरी बच्ची को बदल दिया है? जब भी किसी बच्चे का जन्म होता था तो उसके पैर में एक टैग लगाया जाता था, मालविका ने भी उसी दिन अपने बच्चे को जन्म दिया था। ऐसी हालत में अकेले उसके लिए बच्चा बदलना आसान नहीं था। उन्होंने किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जन्म नहीं दिया था जिसमें इस तरह की लापरवाही हो जाए। हॉस्पिटल में बच्चों को लेकर बहुत सावधानी बरती जाती थी, फिर भी उनके बच्चे बदल दिए गए। इससे राधिका को समझ आ गया था कि जरूर आदर्श ने मालविका की मदद की थी। हाँ मैंने उसकी मदद की थी, तो क्या करता मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि केशव सिंघानिया की औलाद को अपना बच्चा समझकर पालता। मैंने बस उसके दिमाग में ये बात डाल दी थी कि अगर मालविका का बच्चा मेरा है तो मैं उसे दिल से अपना लूंगा। उस दिन मैंने सारे नर्सिंग स्टाफ को वहां से हटा दिया था तो मालविका ने अपने भाई की मदद से बच्चों को बदल दिया। आदर्श ने पूरी कहानी राधिका के सामने खोल कर रख दी थी। तुम इतने घटिया इंसान कैसे हो सकते हो, राधिका ने रोते हुए कहा। राधिका ने कभी नहीं सोचा था कि आदर्श उसके साथ ऐसा करेगा। वो उस पर बहुत यकीन करती थी, जबकि उसकी वजह से इशिका को इतना सब कुछ झेलना पड़ा था। सच जानते हुए भी आदर्श इशिका से बहुत नफरत करता था और उसके साथ बुरा बर्ताव करता था। आदर्श ने जवाब में कहा, हाँ मैं हूं घटिया और पागल, लेकिन मुझे ऐसा बनने के लिए तुमने ही मजबूर किया है, और अब तुम मेरे पागलपन की हर हद को देखोगी। अपनी बात खत्म करके आदर्श ने राधिका के कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया था। उसने सच ही कहा था, वो पागलपन की हर हद पर उतर आया था और राधिका के साथ जबरदस्ती करने लगा। राधिका आज से पहले पहली और आखिरी बार केशव के क्लोज आई थी। आदर्श ने आंखों में पागलपन लिए राधिका की तरफ देखकर सनक भरे लहजे में कहा, बहुत टाइम हो गया होगा ना तुम्हें, उम्मीद है ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही होगी। राधिका किसी लाश की तरह वहां पर पड़ी हुई थी। उसने बिना किसी भाव के कहा, मुझे बस नफरत हो रही है, बे इंतहा नफरत। अचानक आदर्श रुका और राधिका के ऊपर से खड़ा हो गया था। एक पल के लिए राधिका को लगा कि शायद आदर्श के अंदर अभी भी कुछ इंसानियत बाकी है, लेकिन तभी उसने राधिका के गाल पर कसकर थप्पड़ लगाया। राधिका की आंखें आंसुओं से धुंधली हो गई थीं। आदर्श ने राधिका की तरफ देखकर गुस्से से कहा, बहुत प्यार से सब कुछ करने का सोचा था, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो किसी चीज का असर ही नहीं होता है, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह हो तुम। याद है 13 साल तक वो सिंघानिया हाउस में रही थी, इतनी मार खाकर भी उसे अक्ल नहीं आई थी। आदर्श की बात सुनकर अचानक राधिका के दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो गई थी। बचपन में मालविका ने इशिका के ऊपर बहुत अत्याचार किए थे, वो उसे अपनी बेटी आयशा का नौकर बनाकर रखती थी। बात बात पर मालविका इशिका को थप्पड़ लगा देती थी और उसे खाना नहीं देती थी। उसने अपने नौकरों से ये तक सुन रखा था कि मालविका इशिका के साथ और भी बुरा बर्ताव करती है। इशिका उस वक्त इतनी छोटी थी कि उसे बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। बस वो यही उम्मीद करती थी कि मालविका का मूड अच्छा हो और वो उसे ना मारे। राधिका ने आदर्श की तरफ देखा। उसने सिर हिलाकर कहा, तुम एक राक्षस हो, तुम दोनों ने मिलकर जानबूझकर मेरी बेटी को इतनी तकलीफ दी। आदर्श ने बेशर्मी से अपने कंधे उचका दिए थे। राधिका मदद के लिए चिल्लाने लगी, प्लीज मेरी हेल्प करो, क्या कोई है यहाँ पर? राधिका को इस तरह लाचार देखकर आदर्श ने हंसते हुए कहा, तुम चिल्लाकर पागल हो जाओगी तब भी कोई यहाँ पर नहीं आएगा। मैंने बाहर सबको कह दिया है कि अपनी बेटी के जाने के गम में तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा।
राधिका ने उठने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे चक्कर आया और बेड पर गिर गई थी। चाहकर भी राधिका उठ नहीं पा रही थी। वो अपनी जिंदगी में काफी मजबूत रही थी, लेकिन आज एक झटके में राधिका का आत्मसम्मान, उसकी इज्जत और उसका गर्व, सब कुछ आदर्श ने तार तार कर दिया था। अचानक राधिका के मोबाइल की नोटिफिकेशन टोन बजी। आदर्श के पास उसका मोबाइल था, उसने चेक किया तो केशव के मैसेज आए हुए थे। वो बार बार उससे पूछ रहा था कि उसे किस तरह की हेल्प चाहिए। आखिर में केशव ने एक वॉइस नोट भेजा था जिसमें वो हॉस्पिटल में आने की बात कह रहा था। केशव के मैसेज देखने के बाद तो जैसे आदर्श पागल हो गया था। उसने अपना बेल्ट निकाला और राधिका की तरफ देखकर कहा, कभी महसूस किया है कि बेल्ट से पीटा जाना कैसा होता है? अपनी बेटी से पूछना, सुना है उसने मालविका से बहुत मार खाई है, तुम्हारा वो आशिक यहाँ पर आ रहा है, कभी सोचा है कि अगर उसने तुम्हें इस हाल में देख लिया तो वो मेरे साथ क्या करेगा? राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया। आदर्श ने उसे पकड़कर उठाया और बाथरूम में ले जाकर बांध दिया था, फिर उसने नल चला दिया था। राधिका का पहला मैसेज मिलते ही केशव सिंघानिया पहले ही हॉस्पिटल पहुंच चुका था। जब उन्होंने वॉइस नोट भेजा था तब उन्होंने ऊपर आने का फैसला किया। राधिका को बाथरूम में बंद करने के बाद आदर्श बाहर निकल ही रहा था कि तभी कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। आदर्श ने दरवाज़ा खोला तो सामने केशव खड़ा हुआ था। केशव ने उसे देखते ही कहा, राधिका कहाँ है? उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत थी। वो बाथरूम में नहा रही है, थोड़ी देर पहले ही उसे होश आया है, इतने दिनों से बेहोश थी तो उसने पहले नहाने का सोचा, बस उसे ही छोड़कर बाहर आया हूँ, आदर्श ने जवाब दिया। वहीं अंदर राधिका उनकी बातें सुन रही थी। वो चिल्लाना चाहती थी लेकिन उसका मुंह बंधा हुआ था। राधिका की आंखों में आंसू थे, उसकी एकमात्र उम्मीद केशव थी, लेकिन वो चाहकर भी मदद नहीं मांग पा रही थी। केशव ने गहरी सांस ली और कहा, उसे मेरी हेल्प चाहिए, मुझे उससे बात करनी है। हाँ, वो मैसेज हम दोनों ने मिलकर ही किया था, तुम्हें क्या लगता है? इतने सालों से साथ हैं तो हमारे बीच किसी तरह का राज रहेगा, आदर्श ने भौहें उठाकर कहा। कैसी हेल्प चाहिए? केशव ने सीधे सीधे पूछा। वो तुम्हें यही कहना चाहती है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। तुम दोनों ने एक दूसरे को वादा किया था कि अलग होने के बाद भी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखोगे, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले ही तुमने अपना वादा तोड़ दिया है। उसने अपनी बेटी को खोया है। ऐसे में तकलीफ में उसने तुम्हें मैसेज कर दिया होगा। बेहतर होगा कि वापस दिल्ली लौट जाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, आदर्श ने सख्त शब्दों में कहा। एक बार बात हो जाती तो केशव ने मिलने की बात रखनी चाही, लेकिन आदर्श ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, उसकी जरूरत नहीं है, मुझे और मेरी पत्नी को इस दुख की हालत में अकेला छोड़ दो। इतना कहकर आदर्श ने केशव को बाहर का रास्ता दिखाया। उसके मुंह से मेरी पत्नी शब्द सुनकर केशव का दिल मानो टूट कर रह गया हो। उसने हाँ में सिर हिलाया और वापस बाहर आ गया था। वहीं उसके जाते ही आदर्श बाथरूम में आया। उसने राधिका की बॉडी को क्लीन किया और फिर उसे दूसरे कपड़े पहना रहा था। तुम्हारा वो पहला प्यार यहाँ से चला गया है और किसी से मदद की उम्मीद मत रखना। मैं तुम्हें घर लेकर जा रहा हूँ, आदर्श ने कहा। इसी के साथ राधिका की आंखों में एक चमक आ गई। उसे उम्मीद थी कि बाहर निकलते वक्त वो लोगों से मदद मांग सकती थी, लेकिन अचानक राधिका को अपने पूरे शरीर में सुन्न सा महसूस होने लगा। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसने महसूस किया कि आदर्श ने उसे एक इंजेक्शन लगाया था। आदर्श ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बॉडी पैरालाइज होगी। वो क्या है ना, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। जब अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मदद के लिए मैसेज कर सकती हो तो आसपास के लोगों से हेल्प मांगना तो बहुत मामूली सी बात है। राधिका को चेंज करवाने के बाद आदर्श ने उसे व्हीलचेयर पर बिठाया और उसे बाहर ले जाने लगा। बाहर आते ही आदर्श ने नर्स से कहा, मैंने डिस्चार्ज पेपर तैयार करवा लिए हैं। मेरी पत्नी को होश आ गया है, पर वो इस वक्त ठीक नहीं महसूस कर रही है। आप सब जानते हैं कि उसने अपनी बेटी को खोया है। मैं बस उसे घर ले जाना चाहता हूँ ताकि वो आराम से रह सके। जी सर, बस मैं पेपर ही आपके पास लेकर आई थी। वैसे आपका प्यार देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अक्सर इस उम्र में लोग अपनी पत्नी से ऊब जाते हैं, नर्स ने मुस्कुराकर कहा और फिर पेपर आदर्श की तरफ कर दिए। आदर्श ने डिस्चार्ज पेपर साइन किए और राधिका को वहां से ले जाने लगा। पीछे से हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। वहीं जब आदर्श राधिका को लेकर गाड़ी में बैठ रहा था, तब दूर से केशव उन्हें देख रहा था। केशव ने गहरी सांस ली और अपना मोबाइल निकाला। उसने तरुण से उसकी पत्नी यानी इशिका का नंबर ले लिए थे। इशिका के पास इस वक्त ईशानी का मोबाइल था, जो उसने उसी के घर से उठाया था। केशव ने इशिका को मैसेज करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए लिटिल फ्रेंड। राधिका इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मुझे आदर्श सिंघानिया का बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा है। वो उसे इस बीमारी की हालत में घर लेकर जा रहा है। जल्द से जल्द उसके पास पहुँचो।